ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर्याजुहाव पुत्रेऽपि तन्मेतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतलयम् मुनिभा। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै कृत्वास्तु कामादितरङ्गमस्ते कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणा। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति तं लय माम शरणम्। भारतवर्ष में क्या विश्व के समस्त ऋषि लोग एकत्रित हुए थे और वो लोग बड़े व्याकुल हो रहे थे कि कलयुग आ रहा है। उस समय लोगों की चित्त वृत्ति भ्रष्ट हो जाएगी, उस समय में लोगों धर्म को और धर्म को ही धर्म मानेंगे, साधु संत लोग अपने धर्म को भूल जाएंगे, गृहस्थ लोग भी अपने गृहस्थ धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, पुरुष स्त्री जैसे हो जाएंगे, स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित हो जाएंगी, किसी भी चीज में सार नहीं रह जाएगा, भगवान की कथाओं में भी सार नहीं रह जाएगा। क्यों? भागवत की कथाएं व्यवसाय के रूप में चले, लोग अपना पाठ जैसे कि कोई बिजनेस करते हैं, रुपया इत्यादि उपार्जन करते हैं बिजनेस के व्यवसाय से, नौकरी चाकरी से। लोग विद्या उस समय में पढ़ेंगे संस्कृत, या जो नहीं पढ़ेंगे वो भी अभ्यास करके कुछ भागवत पढ़ेंगे और उसके द्वारा जीविका उपार्जन करें। इस तरह से कथाओं में भी सार नहीं रहेगा, इस तरह से सारा संसार भ्रष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, बैठ जाओ मैया, बैठो बैठो बैठ, एकदम चुपचाप बैठ। लोग धर्म कर्म सभी भूल जाएंगे, उस समय क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या करना चाहिए विचार कर रहे थे उस समय में। लोग भगवान के शरण में गए, उनको यह हुआ आदेश हुआ, आप लोग तब तक पुराणों की कथा सुनिए। और उसी समय में कृष्ण द्वैतायन ऋषि के शिष्य कौन रोमभ्रत उग्रश्रवा नहीं उग्रश्रवा नहीं रोमहर्षण उस समय थे, उसे भागवत की कथाएं पुराणों की कथाएं सुने। उस सब लोगों ने मिलकर के ये निश्चित किया कि कलयुग मोक्ष को पार करने के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है उपाय। उसमें भी पुराणों में भी श्रीमद् भागवत, जो लोग कलयुग के इन दुर्गुणों से बचना चाहते हैं उनको श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए, और श्रीमद्भागवत में जो वर्णन किया गया है उसको पालन करना चाहिए। केवल कान से सुनने से नहीं होगा, होगा बहुत विलंब होगा। जो भागवत में लिखा गया है, भागवत का सार है कृष्ण के चरणों में भक्ति करना। तो जो लोग भागवत की कथा सुनेंगे, देवता देवियों की उपासना करेंगे, विभिन्न प्रकार की देवता देवियों को, वो लोग कहेंगे कि हमारा कुल का गुरु वो चंडी जी हैं, कंकाली जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब कहेंगे और उनकी पूजा करेंगे और भागवत भी सुनेंगे। तो इसका मतलब हुआ जो भागवत सुन करके भी उनमें निष्ठा नहीं हो रही है, वो भागवत को नहीं मानते। भागवत साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं बद्ध जीवों के लिए कलयुग में। तो उनको सुन करके ठीक वैसा ही आचरण करना चाहिए। नंद बाबा, जसोदा इत्यादि सभी नहीं करते, इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं कुछ कर सकता, इसलिए हमारा ही स्वरूप गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा करो। इसलिए इंद्र की पूजा बात करके और गोवर्धन की पूजा, अपनी पूजा कराई। इंद्र को भी अभिमान हो गया था, इस दोष के लिए इंद्र को ने ब्रज को डुबाना चाहा, किंतु कुछ नहीं कर सके। उसी तरह से ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि पालन स्थिति करने वाले अपने को समझते हैं, वो भी ब्रज में कृष्ण को देख करके उनको मोह हो गया, ये मैं सृष्टि करने वाला ही है, क्या है। अंत में कृष्ण ने अपना उनको स्वरूप दिखलाया और अंत में उन्होंने समझा कि ये सर्वेश्वर ईश्वर समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर है, इनकी पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है। इसी तरह से भागवत में उपाख्यान के द्वारा, दूसरे दूसरे चीजों के द्वारा बताया गया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और दूसरे सब इनके अंश और कला है। कृष्णस्तु भगवान सन, भागवत को लाख बार सुनते हैं और यह विचार नहीं आया कि कृष्ण की पूजा करने से ही सब देवता देवियों की पूजा हो जाएगी, तो वो भागवत सुनना नहीं हुआ। जितने देवता देवी हैं ये भगवान के दास दासी हैं। यदि कृष्ण की पूजा हो जाती है तो तस्मिन तुष्टे जगत, यदि प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कृष्ण को छोड़कर, गीता भागवत को छोड़कर यदि दूसरे लोगों का आश्रय लेते हैं तो हमारा दुख भी दूर नहीं होगा, सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए इस भागवत को इस दृष्टि से सुने कि हमको इसमें जो सुनेंगे, इसमें जो तत्व विचार आएगा, हम उसको मान लेंगे और वैसे ही कृष्ण की उपासना एकांतिक रूप में करेंगे, कृष्ण का नाम ग्रहण करेंगे। भागवत का सार अंत में बतलाया गया, भगवान की भक्ति भी होगी कब, यदि हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। वो नाम कलयुग में क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं है, केवल राधा कृष्ण का नाम है, यही समस्त वेदों का, शास्त्रों का, उपासनाओं का ये सार है। इस विश्वास के साथ में इसको सुने और करें। एकादशी का व्रत जरूर करेंगे भागवत सुनकर के, अम्बरीश महाराज उपाख्यान के द्वारा देखा, प्राण चला जाएगा तभी एकादशी नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद महाराज के उपाख्यान के द्वारा दिखलाया, जगत के जितने दुख भी आ जाए उसको सहने के लिए तैयार है, किंतु भगवान नाम और भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए कदापि मैं तैयार नहीं हूं, ऐसा प्रहलाद महाराज जैसा मैं। उनके पिता ने उनको मारने की सारी योजनाएं बनाई किंतु मार नहीं सके छोटे प्रहलाद महाराज। ऐसे ही भगवान का आश्रय ग्रहण पर, श्रीमद्भागवत का आश्रय ग्रहण करने पर कोई भी जीव कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी जैसा भाव होना चाहिए। भागवत को सुन करके जैसे ब्रजवासियों को कृष्ण में अनन्य भाव था, कोई उनको अपना सखा समझ रहे हैं, कोई उनको अपना बेटा मान रहे हैं, कोई उनको अपना प्रियतम मान रही है। यदि भागवत सुन करके इन तीनों में से कोई एक भाव नहीं आया तो भागवत क्या सुना? धन धन प्राप्त हो जाए और दुख दूर हो जाए, या बेटा नहीं हो रहा है वो हो जाए, या दुख दूर हो जाए, इसके लिए नहीं। ये तो अपने कर्मों से जैसा है वो तो भोग रहे हैं या कर रहे हैं, इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। यदि भागवत सुनने से यशोदा मैया जैसा वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति आ जाए, यदि भागवत का श्रवण करने से कृष्ण को जैसे गोपियां अपना प्रियतम मान रही हैं, उनके साथ में साधारण एक मनुष्य का बालक नंद बाबा का पुत्र मानकर, अपना प्रियतम मानकर, विवाह हो न हो किसी भी स्थिति में उनको अपना प्रियतम यदि मान ले, उनको अपना सखा मान ले, जैसे सीताम सुबल इत्यादि उनके साथ रहते, वैसे ही भावना करें। करते करते अंत में जब प्राण निकलने को आएंगे तो यदि आपकी भावना रहेगी दूसरे जन्म में ऐसा ही भाव होकर के और चले, जैसे भक्त महाराज जी का हुआ, अंत में मरते मरते हरिण की चिंता की तो हरिण हुए, और तीसरे जन्म में जब ब्राह्मण होकर के जब भगवान की उपासना करते करते भगवत चिंतन करने लगे तो भगवत चिंतन करते 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 वो बैकुंठ में चले गए। ऐसे ही करना है ये, इसलिए आप लोग इसी रूप में भागवत सुनेंगे। ये भागवत यहां की वस्तु नहीं है जगत की। आजकल हम लोगों ने इसको सस्ता बना दिया है, ₹5 में भागवत मिल जाता है, ₹5 में भागवत मिलता है, मिलेगा ₹5 में? पृथ्वी की अनंत संपत्ति भी देकर के भागवत नहीं मिलेगा। ये भागवत कहां है? जो सचमुच में कृष्ण के रसिक परम तत्व भक्त हैं उनके हृदय में। अभी तो ये अक्षरात्मक रूप में है किंतु हम इसे दर्शन नहीं कर रहे। कृष्ण का दर्शन करना, भागवत का दर्शन करना दोनों की एक बात। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक भागवत सुनी। भागवत सुनने का क्या ये फल है कि सांप काट दे, उनको सांप काट दिया? सांप तो काटा नहीं, उन लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा एक हुआ। भागवत सुन करके संसार से परम मुक्त होकर के कृष्ण के परिकर बन करके गोलोक वृंदावन में वो पहुंच गए, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए निष्किंचन होकर के श्रीमद भागवत का श्रवण करो। बतलाया गया है कि पहले परीक्षित महाराज जी ने किसी ऋषि का श्राप से 7 दिनों के बाद में मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने सुनकर के संसार से वो परम विरक्त हो गंगा नदी के किनारे आकर के खाना पीना छोड़ दिया और जमुना के किनारे गंगा के किनारे बैठ गए। भारतवर्ष के सारे ऋषि महर्षि सब लोग वहां पर उपस्थित हुए। क्या करने दे? क्या करना उचित है? 7 दिन की केवल उम्र है। कोई कह रहा है जो दान करो, कोई रहा है जो पुण्य करो, कोई कहता है कोई व्रत करो, और इतने में सुखदेव गोस्वामी आए। वहां पर नारद व्यास उनके पिता और गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, और उनके भी गुरु व्यास हैं, और उन व्यास जी के और पराशर इत्यादि ऋषि हैं, उनके गुरु नारद जी हैं, और कितने बड़े बड़े ऋषि सब वहां पर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम भागवत में है। सब लोगों ने एक पत्ते एक छोटे से बालक को सुखदेव गोस्वामी को व्यास का आसन दिया। परीक्षित महाराज ने इनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भागवत का 7 दिन श्रवण करो। 7 दिन भागवत का श्रवण करा। यह पहला भागवत का श्रवण है। दूसरा हुआ वो भक्ति देवी बूढ़ी हो गई थी, भक्ति का जन्म हुआ दक्षिण प्रदेश में और कर्नाटक इत्यादि में वो बड़ी हुई कूच, और जब सौराष्ट्र में अथवा गुजरात में जब आई वहां धन धान्य की प्रबलता है, लोग भोगों में आ सकते हैं, उनको किसी ने आदर नहीं किया, आदर नहीं करने से वो बूढ़ी हो गई। उनके बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी बूढ़े हुए, कोई ज्ञान वैराग्य की परवाह नहीं करता। वृंदावन में आई वो तो नवज्योति बन गई, किंतु ज्ञान वैराग्य को किसी ने पूछा नहीं, वो बूढ़े के बूढ़े बने रहे। नारद जी बाई चांस आगे नारद जी को देखकर के भक्ति देवी की स्थिति देखकर के उनसे पूछा, उन्होंने अपने दुख का कारण बतलाया। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं पता लगा करके देखता हूं कि ये तुम्हारा दुख कैसे दूर होगा और तुम कैसे सुखी होगी और तुम्हारे बच्चे भी ज्ञान बनेंगे, ये फिर से ज्ञान लाभ करके नवयुवक हो जाए। वो घूमते घामते घामते कहीं गए हिमालय की पहाड़ों में, और वहीं पर कहीं सनत सनंदन सनातन इत्यादि चतुष्क कुमार जो उनके बड़े भैया और गुरु के रूप में ही वो मिले, उनको देख करके उन्होंने ये सब बतलाया, जैसे एक भक्ति देवी बूढ़ी हो गई, उनके ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, क्या किया जाए। मैं संक्षेप में बतला रहा हूं, पीछे से ये सब बतलाए गए। उन्होंने कहा कि भागवत का श्रवण करो और उसको भी श्रवण कराओ। वही हरिद्वार में ही ये कथा बैठी और वहीं पर भक्ति देवी का आवाहन किया गया, उनके बेटे भी आए, वो मूर्छित अवस्था में 7 दिन तक भागवत की कथा हुई और उसमें भक्ति देवी को परम उल्लास हुआ और ये उनके बेटे भी युवक युवती हो गए। ये दूसरी बार। और तीसरी सीटिंग कहां बैठी, गोकर्ण और धुंधुकारी बाई, एक कलयुग के करी करी बतलाया है भागवत में। कितने दिन बाद, पहला वाला तो हुआ कृष्ण के चले जाने के बाद में सुखताल में 30 वर्ष के पश्चात में, 30 वर्ष के अंदर में परीक्षित महाराज जी ने सुना। और दूसरा हुआ कितने वर्ष के बाद याद है, तो ये हुआ और उसके 100 वर्ष के समझो करीब, और 200 वर्ष बाद में हुआ वो धुंधकारी गोकर्ण वाला, वो तीसरा। इस तरह से पहली बार में तो वो हुए परीक्षित महाराज जी को गोलोक की प्राप्ति हुई, वो कृष्ण के परिकर थे, जगत के जीवों के लिए ऐसा उन्होंने दिखलाया कि हमको सांप काटने वाला उनको सांप नहीं छू सकता। सुखदेव गोस्वामी जी से कम नहीं है, किंतु जगत के लिए ये श्रीमद्भागवत रूप पुराण सूर्य प्रकाश करना था, जो जब तक ये जगत की सृष्टि रहेगी तब तक जीवों का कल्याण होता रह गया। वो सुनेंगे, लाख आदमी सुनेंगे, उनमें एक दो तो जन भले ही उनका ये ज्ञान होगा और भगवान का भजन, सबका नहीं होगा, क्यों, वो अच्छी तरह से मन से इसको पालन करने के लिए नहीं सुनते। परीक्षित महाराज जी जैसा ने सुना सुखदेव गोस्वामी ने, ऐसा कोई सुने अथवा भक्ति देवी ने और उनके पुत्रों ने और नारद जी ने चतुर्सन से जैसा सुना, और जैसे धुंधुकारी ने गोकर्ण से सुना और उनके सफारदों ने पीछे से सुना, वो लोग सुन करके वो लोग बैकुंठ में चले गए। हम लोग क्यों नहीं जा रहे, लाख बार सुनते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करके एकाग्र चित्त से इसको पालन करने के लिए नहीं सुनते, उस रंग में रंग नहीं जाते, इसलिए ऐसी दशा हो जाती है। जिनको भागवत की कथा सुनने से गोलोक वैकुंठ की
और उसे रूप ब्रज की प्राप्ति हो गई, उसको अब संसार में रुपए पैसे वाणिज्य व्यवसाय या और कोई करने की जरूरत है कि नहीं है, है? किंतु फिर भी हम ब्रह्म में रहते हैं, इसका कारण यही है, हम एकांतिक चित्त से सचमुच में उसको पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए हम नहीं करते, संसारिक दुख कष्ट को दूर करने के लिए और कुछ सुख साधारण सा प्राप्ति करने के लिए कर लेते हैं, बस भागवत सुनना हो गया। अभी आजकल अधिकांश प्राय 100 में से 100 कभी कोई बिरला यदि हो तो उसको छोड़ दो, नहीं तो 100 में से 100 रुपए पैसे के लिए भागवत पाठ करते हैं। अभी हमारे पास में बहुत से पंडित अभी आते हैं, महाराज जी आप बंबई जाते हैं, आप पुणे जाते हैं, आप कहां कहां जाते हैं, हमारी रोजी रोजी भी लगा दीजिए भागवत में, सुना उन लोगों को, कल भी एक आए थे ये, आप यहां पर हमारे लिए भागवत रखते, बोले भागवत तो रख देंगे किंतु पैसा कैसा नहीं मिलेगा, हम लोगों से कह देते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम लोगों का हृदय चाहिए, तुम लोग भगवान का भजन करो इसलिए हम लोग भागवत सुनाते हैं, पैसे के लोग से नहीं, उनका मन खराब हो जाता है, लौट जाते हैं। तो अधिकांश लोग इसी तरह से करते हैं, कीर्तन भी इसी तरह से आजकल बेचा जा रहा है, ये सब बेचे नहीं, बेचे नहीं। सचमुच में यदि कोई इस तरह से भागवत की कथा सुनेगा निश्चय उनका परम कल्याण होगा और ये जगत में नहीं रहेंगे, इसको छोड़ करके चले जाएंगे माया के पास, गुरु वृक्ष में जरूर चले जाएंगे। आप लोग इसी तरह से सुनेंगे, हम लोग ये नहीं कहेंगे, जैसे आप लोग प्रणामी दीजिए, प्रणामी अपनी श्रद्धा दीजिए, यही प्रणामी रहेगी। हम लोग जैसे अन्नकूट होता है, भागवत वाले क्या करते हैं, पास करके भागवत में कहते हैं ये अन्नकूट होगा, 56 का दर्शन होगा, हजारों रुपए बन जाते हैं, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, होगा थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग दे देंगे, जिसकी जो श्रद्धा होगी, हम लोग उस रूप में नहीं करेंगे। हम लोग सुदामा जी का में चावल और चिड़वा का कोई कारोबार नहीं करना है, वो किसका विवाह होता है ना, रुक्मिणी जी का, रुक्मिणी जी का विवाह माने अपने हृदय में कराएंगे भगवत भक्ति के लिए, बामन के दिन में छत्ता और ये सब की हमको जरूरत नहीं है, आपको छत्ते की जरूरत है, कृष्ण की कृपा रूपी छत्ता आपको हम लोग देंगे, ये भागवत देगा। इस तरह से शुद्ध रूप में भागवत सुनने की चेष्टा करें, यदि एक आदमी भी यदि सुना इस रूप से निश्चय उसका कल्याण होगा। इस तरह से मैंने संक्षेप में इसका कुछ साथ बतलाया, आप लोग ऐसे बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे, शाम को भी भागवत में आएंगे, अपने और भी सखाओं को, परिवार को, सहेलियों को, सबको लेकर के बड़े प्रेम के साथ में सुनिए यहां पर भागवत। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अब ये शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपको प्रारंभ से भागवत का महात्मा और जो सब चीजें हैं नियमित रूप में आपको समझाएंगे, अब बीच बीच में कभी कभी मैं आकर के कुछ उसके सार के संबंध में कुछ बतलाने की चेष्टा। गौ प्रेमानंदे ताय नमो नमः।
आज आप लोगों ने सवेरे और इस समय ध्रुव चरित्र, उत्तानपाद का चरित्र और महाराज प्रियव्रत का चरित्र आपने श्रवण किया। ये बातें सत्यजु की हैं, अच्छे करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले की बात, उस समय भगवान को पाना कितना कठिन काम था ये ध्रुव जी के चरित्र से समझे होंगे। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी लेनी, और तब जाकर के 6 महीने के अंदर में ही भगवान ने उसको दर्शन दिए, और वो भी दर्शन दिया एक क्षण के लिए, कोई उनकी सेवा ग्रहण नहीं की, उनसे बातचीत नहीं कुछ किया, और बोले जे जाओ 36,000 वर्ष के लिए तुम पृथ्वी का राज्य भोगो। दिया क्या? एक मैल दिया, उसमें कुछ भगवान की सेवा लाभ नहीं हुई। वो तो हुई जब ये संसार छोड़ करके गए, तब ध्रुव लोक में स्थित हुए, वहां पर भी भगवान की कौन सी प्रेममयी सेवामयी सेवा मिली उसको, इतना कठोर तपस्या के बाद भी। इसलिए भगवान जप से, तप से, योग से, दान से, तीर्थों के स्नान से नहीं मिलते, वो ब्रज के भावों के अनुसार में, गोपियों के अनुगत्य में या ब्रज गोपों के अनुगत्य में प्रेममयी सेवा से मिलते हैं। इतना कठोर तपस्या किया और देखो कलयुग में एक वेश्या थी, उसने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, मगर ऐसी हो गई कि भव सागर को पार करके भगवान की सेवा में चली गई। जगाई मधाई इत्यादि थे, कैसे भगवान का आश्रय करके नाम और उनकी लीला कथाओं का श्रवण करके भव सागर को क्षण मात्र में पार हो गए और गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। कलयुग का यही महात्मा है कि समस्त दोषों के रहते हुए भी यदि कोई लोग भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करें, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करें, तो सहज ही ये संसार को प्राप्त होकर के सदा के लिए भगवान का दर्शन और साक्षात सेवा पड़ेगा। ध्रुव को क्या मिला? ये जगत में रह करके उन्होंने भगवान को का साक्षात कोई सेवा किया, पर जगत में भी उस लोक में गए जहां प्रसिद्ध ध्रुव लोक है, और बहुत दूर से सेवा करते हैं, ब्रज की भावना से नहीं करते, हनुमान की तरह नहीं करते, गोपों की तरह में नहीं करते। प्रिय भक्त का भी चरित्र आप लोगों ने सुना, कैसा सुंदर, उसमें भारती का भी ये सब सुनाएंगे और फिर लीलाओं का वर्णन किया। अभी इसके बाद में भरत जी का चरित्र आएगा, हम उनके संबंध में दो चार बातें मैं कहता हूं, क्योंकि समय हो गया है, 7 का प्राय बजी गया है, 2-4 मिनटों में उपसंहार इसका करेंगे। ध्रुव जी के चरित्र से भरत जी का चरित्र का कुछ अधिक वैशिष्ट है। भरत जी अपने समय से, इस समय से करोड़ों वर्ष पहले, ध्रुव जी के बाद प्रियव्रत राजा के बाद में हुए, वो 100 भाई थे, अपने पिता के पुत्र थे 100, एक ही पिता, उसके 9 जो भाई थे वे 9 जोगेंद्र हुए, जाति पाति से ऊपर उठ करके ब्रह्म तत्ववेत्ताओं में भी सबसे उत्तम हुए, इनकी जाति कुछ नहीं, और 81 आदमी ब्राह्मण हुए कर्मकांडी, और भरत महाराज अकेले परम भगवत भक्त हुए। इन सब लोगों से श्रेष्ठ भगवत भक्ति ऐसी है, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे त्यागी होकर करे, यदि भगवत भक्ति का आश्रय किया है तो ये ब्रह्मवेत्ताओं से भी बड़े ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भरत महाराज जी एक ही माता पिता के पुत्र होने पर कोई ब्राह्मण हुआ, कोई क्षत्रिय हुआ और कोई ब्रह्मज्ञानी बने। आज जैसा ये कानून नियम नहीं था, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाएगा, जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो ब्राह्मण का पुत्र होने पर भी रावण जैसा असुर इत्यादि कहलाएगा। यदि हम कहते हैं चतुर्वेदी एंड शू कंपनी, तो वो चतुर्वेदी रहा
नहीं रहा,
तो वो चमार इत्यादि की गिनती में आएगा, क्योंकि उसी का कारोबार कर रहा है। इसलिए पिता के पुत्र के रूप में जो होते हैं और उसका कर्म नहीं करते हैं तो उस जाति के नहीं माने जाएंगे। एक शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी यदि भगवान का भजन करता है तो जाति पाति से बहुत अतीत है, उसको शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं समझ करके भगवान का सेवक कर समझना। हरि का भजा सो हरि का भजा, यदि उसको ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं तो यह अपराध होता है। सुखदेव गोस्वामी को मत समझो कि वो शूद्र के थे लड़के, व्यास जी को शूद्र मत समझो, नारद जी को शूद्र मत समझो, कृष्ण को ग्वाला केवल मत समझो या जादव मत समझो, राम को क्षत्रिय मत समझो, नहीं तो छत्री लोग उनका जूठा क्यों खाते हैं? इस चीज को समझो, ये शरीर में जब तक हम हैं प्रकृति के गुणों को ही मान लेते हैं जब मैं हूं, अतः तो इसके इस शरीर में आत्मा इसे अलग है, वो आत्मा प्रकृति स्तर उत्पन्न हुआ नहीं है, उसमें अभी जो मैं और मेरा दिख पड़ता है ये प्रकृति का धर्म है। अप्रतिक प्रकृति का यह अभिमान लेने से ही हम ये समझते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं ईसाई हूं, मुसलमान हूं और ये सब समझते हैं। असल में जीवात्मा भगवान का सेवक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ऐसा समझने वाला समदर्शी है, वो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भक्तों में जाति पाति का भाव नहीं लगाना चाहिए। भक्त महाराज जी अपनी उम्र से, जब उनकी आधी उम्र हुई, आधी उम्र कितने उम्र में हुई, कितने हजार वर्ष में, 50,000 वर्ष की उम्र में उनकी आधी उम्र पूरी हुई। उसी समय में संसार को दुख में जानकर अपने इस संसार में रहने वाले बेटे को, बेटियों को, स्त्री को, संपत्ति को छोड़ करके और भगवान का उपासना करने के लिए वन में चले गए, तपस्या करने नहीं, आराधना करने के लिए। तपस्या में और आराधना में बहुत अंतर है। तपस्या अपने शारीरिक दुखों को अवलंबन करके, अर्थात शरीर को नाना प्रकार से कष्ट दे करके, उपवास रह करके, अग्नि ताप करके, कुछ नहीं खा करके जो तपस्या होती है वो अलग चीज है, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे मन के से, आत्मा से जो प्रेम भगवान का होगा, प्रेम से जो उनका भजन होगा, उसको कहते हैं आराधना। जैसे हम लोग आप लोग कर रहे हैं, ये आराधना है, ये तपस्या नहीं है। इसमें कितना आनंद है, कीर्तन हो रहा है, भगवान की लीला कथाएं हो रही हैं, और जाएंगे तो पेड़ा प्रसाद मिलेगा आप लोगों को, और घर में भी ये सबकी चिंता करेंगे, इसलिए ये आनंदमय, ये आराधना है। खूब पेट भर करके ठाकुर जी का पूरी पकवान, लड्डू, पुआ, कचौड़ी खूब खाओ, और खा करके हरी बोलो, हरी बोलो, गौर प्रमाण, ये उपासना है, तपस्या नहीं है। तपस्या में कष्टारी कष्ट होता है, इसलिए वो आराधना करने के लिए गए और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। करते 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 वो शारीरिक गुणों से ऊपर उठ गए, मैं और मेरे के अभिमान से कुछ ऊपर होने लगे। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति, इस स्थिति में पहुंच गए, किसी के लिए कोई दुख की जरूरत नहीं, कोई कामना नहीं, बस भगवान की सेवा, और सुख दुख को बराबर समझने लग गए, सब में समदर्शी हो गए। अब क्या होता है, इसी समय में भगवान कुछ शिक्षा देने के लिए जगत को, देखो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर भी श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और इसके बाद में भाव अवस्था में आप पहुंचने ही वाले थे या पहुंच रहे थे, ऐसी उत्तम स्थिति। और उस समय में एक हिरण के बच्चे को पानी में डूबते हुए देखा, उसकी मैया सिंह के गर्जन के डर से नदी को छलांग देते समय में उसके गर्भ से एक बेटा नदी में गिर गया, और वो बाहर में जाकर के नदी के उस पार जाकर के छटपटाती हुई बच्चे की तरफ में देखती हुई और वो मर गई। इन्होंने देखा, भरत महाराज जी उस समय में भगवत आराधना में कुछ कर रहे थे, इतने में उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी और बच्चे पर पड़ी, अरे ये मेरे देखते देखते मर जाएगा, इसकी मैया तो मर गई और मैं यहां पर हूं, जीव पर उपकार करना मेरा धर्म है, इसलिए वो उठ करके और चले गए। जाते ही उस बच्चे को उठा लिया और उसने समझा जी मेरी मैया है, बड़े उसके तरफ में प्रेम से देखने लगी। इन्होंने अपने आश्रम में उसे ला करके गैया के दूध से उसका पालन पोषण करना आरंभ कर दिया, और धीरे धीरे बेटा जैसा स्नेह, ममता और आसक्ति उसके प्रति हो गई। अरे अपने बेटे को तो छोड़ा, स्त्री को छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ा, और प्रौढ़ावस्था में इनको न जाने कहां से एक हिरण के बच्चे पर ये ममता जगी, ये मेरा बेटा ही है, पालन पोषण करने लगे। और वो बच्चा ऐसा फुदकता हुआ उनकी गोदी में छलांग मार करके बैठ जाता। जब वो ध्यानस्थ होने की चेष्टा करते अभी सिंह तो उठी नहीं थी, वो ऐसे ऐसे करता पीछे से, और जब वो देखने लग रहे तो बस उनकी गोदी में बैठ जाता, चुपचाप बैठ जाता। अब उसको वो दुलार करने लगते, स्नेह करने लगते, आसक्ति बढ़ते गई, जैसे हमारी आसक्ति संसार में बढ़ती है। देखो कहां वो मुक्त होने जा रहे थे और वहां से इस संसार में आसक्ति हो गई। बाल बच्चों को तो छोड़, हम लोग कुत्ते रखते हैं, कुछ देते हैं, बस कुत्तों पर स्नेह आ जाता है, भगवान को छूट जाता है। माता पिता को दूध नहीं खिलाते, कुत्ते को खिलाते हैं। माता पिता को कार में नहीं ले चलते, कुत्ते को कार में ले चलते हैं, और उसको झबरे कुत्ते को स्नान करते हैं, कराते हैं साबुन लगा करके, सोते समय भी उसको गोदी में लेकर के सोते हैं। तो उनकी क्या दुर्गति होगी? अरे ये तो मरकर के हिरण हुए, कुत्ते होकर के होंगे। इसलिए कुत्तों का ऐसा पालन मत करो, गरीबों पर दया करो, किंतु उसके आसक्ति में बंधन करके मरो मत, नहीं तो तुम्हारा जन्म भी वैसा ही होगा। भूतों की चिंता करते हुए मरोगे, भूत बनोगे। देवताओं की चिंता करते हुए देवता जैसा बन करके फिर वहां से लौट आओ। और मामुपत्यतु कौन थे पुनः जन्म देते, भगवान की चिंता करते करते भगवान के पार्षद होकर के उनकी नित्य सेवा में जाओगे, फिर जन्म से अतीत हो। इन चीजों को ख्याल रखना चाहिए। ऐसे करते 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 जब वो बड़ा हो गया तो वो कहते हैं, और आज मेरा धन्य है भाग, आज पृथ्वी का धन्य भाग है, ये ऐसा कृष्ण सार हिरण पृथ्वी पर जहां चरण रखता है वहां की पृथ्वी पवित्र हो जाती है, और वो यज्ञ करने लायक पवित्र यज्ञ बन जाती है। आज ये पृथ्वी धन्य हो गई इसके चरण की धूलि पाकर। इसी प्रकार से आसक्त होते 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 जब उनका अंतिम समय आया तो एक दिन फुदकता हुआ हिरणों का दल देखा, और उसमें छलांग मारता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया। हिरण कहां गया, हिरण कहां गया, अरे भगवान कहां गया, तुम्हारा साधन भजन कहां गया, इसको तो परवाह नहीं तुमने की, और परवाह कर रहा है कहां, मरने की तरफ में जा रहा है, हिरण कहां गया, हिरण कहां गया। ऐसे करते 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 इतने में काल आया, और चिंता करते 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 वो मरा, और मरते समय में वो स्मृति उनको हिरण बना दिया। इसलिए हम लोगों को अभी से कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी जगह भी अपनी चिंता मत लाने दे। ये तो हिरण हुए, यदि हम लोग भगवत चिंतन करें और करते करते देखें गोपियां हमारी आराध्य हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वृंदावन में विहार कर रहे हैं, कोटि 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 गोपियां उनके चारों तरफ में घेर करके उनकी सेवा करते हुए रास इत्यादि कर रहे हैं। कैसे एक गोपी राधा जी की सेवा कर रही है, ऐसी चिंतन करते करते यदि हमारी मृत्यु हो तो हमारी वैसे ही स्थिति होगी, हम इस जगत में फिर नहीं आएंगे, गोलोक वृंदावन में सीधे जाएंगे। इसलिए भागवत कथाओं की अवतारणा की गई है, ऐसे ही तुम चिंतन करो, संसार की कोई भी चिंता मत करो, नहीं तो फिर संसार में आना पड़ेगा। भक्त महाराज जी भक्ति में बहुत ऊपर उठ गए थे, भावावस्था में उठ गए थे, इसलिए हिरण भोकर के पैदा होने पर भी उनको जाति स्मर हुआ, अर्थात उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। हम लोग मरते हैं तो याद नहीं रहेगी, क्योंकि तो उतना साधन भजन तो किया नहीं, हमारी यही कहां दुर्गति होगी, कोटि कोटि जन्म लग जाएंगे। वो जाति स्मर होने के कारण, भावावस्था तक पाने के कारण, तीन जन्म में ही उनका उद्धार हो गया। दूसरे जन्म में हिरण होकर के पैदा हुए, और जहां पर वो मरे थे उसी जगह पास में गंगा और गोमती नदी का संगम है, वहीं पर सोनपुर अभी वर्तमान उसका नाम है, बहुत बड़ा भारी विराट मेला लगता है, वहां पर ऋषि महर्षि लोग तपस्या करते थे, साधन करते थे, वहीं पर रहते थे, इसलिए उनका जन्म भी वहीं पर हुआ। अब उनको जाति का पूर्व जन्म का बात याद होने से वो हिरणों का दल छोड़ दिया, ऋषियों के समीप रहते, जो कुछ टुकड़ा मिल जाता खा लेते, पास ही घास चर लेते, और गंगा में जाकर के स्नान करते और वहीं पर पानी पी लेते, फिर आश्रम में आकर के बैठ करके हरि कथाओं का श्रवण करते। कुछ दिनों में ही उनका कर्म फल नष्ट हो गया और उनका शरीर बदल गया, अब इस बार ब्राह्मण बालक होकर के आए। पहले जन्म का इनको याद है, इसलिए बचपन से ही मूढ़ बन गए, जान सुनकर के पागल बन गए। पिता माता बड़ा होने पर उनको ओमकार उच्चारण करने के लिए शिक्षा देते, जब पवित्र करना चाह ओंकार ही नहीं उनको उच्चारण आया, ओम नहीं बोल सके, कख बघ नहीं बोल सके, आ नहीं बोल सके। बेटा पिताजी ने कहा ये कहां से ऐसा लड़का उत्पन्न हुआ, ये गूंगा न जाने कैसा, स्नान भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, खाता भी नहीं है, ऐसे क्या किया जाए। जब उसकी मरने की जब मरने का समय आया, उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को कहा देखो ये भरत छोटा सा लड़का है, कुछ समझता नहीं है, पागल, इसका तुम पालन पोषण करना। उनके हाथों में दे करके वो चले गए। और ये जब और बड़ा हुआ, खेत की मेड़ पर इसको रखवाली के लिए भेज दिया जाता, वहां पर कुछ चोरों ने इनको पकड़ लिया और इनको देवी के सामने में कुरुक्षेत्र में बलि देने की चेष्टा की, ये आज हमको बहुत रुपया पैसा मिलेगा तो इसकी बलि देंगे। जब उनको बलि देने के लिए ले गए तो ये भी पीछे पीछे चले गए। उन्होंने भेड़ और बकरे को जैसे पकड़ करके ले जाया जाता है वैसा ले गए। इन्होंने हां ना कुछ नहीं बोला, पीछे पीछे चल गए। उस समय उनकी उम्र 15-16 वर्ष की थी। जब देवी के सामने ले जाकर के खिलाया पूरी और भिजा हुआ चना गुड़ उनको खिलाया तो पेट भर कर खाया, समझ रहे हैं कि हमको ये बलि देंगे। तभी भगवान के भक्त निर्भय एकदम होते हैं, निर्भीक होते हैं, शरणागत, मृत्यु से डरते नहीं है, इसलिए निर्भीक रहे। उन लोगों ने खिला पिला करके गले में लाल कपड़ा बांधा, सेंदूर लगाया, फूल की माला दी और बोले जैसे इस काठ के अंदर में तुम अपना शरीर चीर लगा दो। बलि को जहां पर बलि दी जाती है देवी को, लकड़ी की बनी हुई उसमें रखे उसमें घुसा देते हैं और किल ठोक देते हैं जो हट्टा से मश न हो। जानवरों को भी ऐसा करते हैं और तब फरसे से ऊपर से मारते। जब गले में लगा दिया इन्होंने सिर, कभी ये भी नहीं कहा जी हमको क्यों मारते हो, मैं निर्दोष हूं, ऐसा मत कहो, का कुछ भी नहीं कहा, बस प्रसन्न चित्त से भगवान का स्मरण करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, और अपने चित्त को एकदम भगवान में लगा दिया। शरीर का अभिमान नहीं, राज्य में कहा हूं, ये लोग क्या कर रहे हैं, चित्त एकदम भगवान में लगा दिया। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने मंत्र उच्चारण करके और तलवार उठा करके उसको मारना जही चाह फरसा से काटने। इतने में देवी ने बड़े जोर से अट्टहास की, बड़े जोर से हंसी और हंस करके हंसने से ऐसा गर्जन किया उनके हाथों से फरसे गिर गए। और फरसे को उठा करके साक्षात रूप से उनको काटा और काट करके उनके पैर उनके मुंडों से जैसे फुटबॉल खेला जाता है खेती उनको लेकर के अग्नि में सुहा। और इसे हाथ जोड़ करके बोलिए प्रभु आप अपना यह महात्मा हमसे छिपा करके रखते हैं जगत के साथ, ऐसा ना कीजिए, जगत के लोग आपको समझेंगे नहीं, साधारण पागल समझेंगे जैसे आपके माता पिता समझते हैं, इसलिए अपना स्वरूप इस प्रकार से मत रखें। और उनसे प्रार्थना करके क्षमा मांग करके फिर मूर्ति में चली गई। ऐसे भक्तों का लोग देवी भी भक्तों की कृपा चाहती हैं और लोगों की तो बात क्या। इसलिए यहां पर मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि, जब यहां पर देवी का जागरण होता है शराब लोग पीते हैं उसे मत्त होकर के बड़ा दुख होता है, बड़ी भीड़ भी उनके सामने में इकट्ठी हो जाती है और तरह तरह के गाने उच्छृंखलताएं वहां पर होती हैं, उसके बदले में भगवान का नाम करते हैं इस कृष्णपुरी में तो कितना सुंदर होता है, नहीं करते हैं। देवी भी इनकी प्रशंसा कर रही है, उनकी स्तुति स्तव करती है। इसके बाद में एक दिन पालकी पर उस देश का राजा रहुगढ़ जा रहा था, वो जा रहा था कपिलदेव जी के आश्रम में ज्ञान की शिक्षा के लिए। इतने में उसका एक कहार बीमार पड़ गया, कहारों ने पालकी रख दी, कहा जी पालकी कैसे जाएगी। राजा ने कहा जो सामने पड़े उसको पकड़ लो। सामने में इनको देखा मोटा छोटा पकड़ा पसंद को पकड़ लाए, पालकी में लगा दी, पालकी में लगा दिया तो पालकी में लग गए, चलने लग गए। थोड़ी देर के बाद में एक चींटी या कोई कीड़ा मकोड़ा देखा तो उसे बचा करके चलने का प्रयास किया तो पालकी डूलने लग गई। राजा कहता अरे कहां हो, जरा ठीक से चलाओ सावधानी से। उन्होंने कहा हाथ जोड़ते महाराज हमारा दोष नहीं, हम ठीक चल रहे हैं, किंतु ये जो नया वाला आदमी है ये पालकी चलाना जानता नहीं, नया है इसलिए ये पैर में पैर मिला करके नहीं चलता, इसलिए पालकी हिल रही है। उन्होंने कहा जे तू बड़ा दुबला है, तुम चल नहीं सकता, तुम नाटा खोटा है, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं उस पर किया। इसके बाद में वो बिगड़ गया राजा, बोले जब तुम जानते नहीं हो मैं देश का राजा हूं, मैं तुमको भी दंड देता हूं, ठीक से पालकी चलाओ और नहीं तो अभी तुम्हें दंड दूंगा। उनको भक्त जो थे भक्ति वो कुछ मुस्कुरा दिया, उन्होंने कहा ये कौन दंड देने वाला कौन और दंड ग्रहण करने वाला कौन, तुम राजा बना ये तुम कौन है, मुझको जो प्रजा समझ करके मुझे जो दंड देना चाहता है मैं कौन हूं, कौन दुबला पतला। उनके आश्रम में जा रहा था कपिल देव जी के, ये कौन है, झट उनके चलो में गिर गया पालकी से उतर कर। राजा महात्मा नाथ कौन है, आपका ही वही वक्त वही कपिल देव तो नहीं है या कनक सुरत कुमार इत्यादि तो नहीं है, अपा अंगिरा और नारद तो नहीं है, आप कृपा करके अपना परिचय दे और मेरे इन संदेहों को जो आपने अभी कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया बुद्धि में, मैं नहीं के लिए जा रहा था, कृपया आप विस्तार से इस ज्ञान को हमको बतला। उन्होंने कहा जी देखो मैं तुम्हारा पूर्वज भरत महाराज था, भरत महाराज का नाम सुनते ही एकदम आश्चर्य, वो भरत महाराज हमारे पूर्वज ये है ये, उनके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करने लग गया। बोला महात्मन आपके बातों को तो मैं नहीं समझ पाया, समझ में इस प्रकार से कब से तुम राजा हुआ, मरने के बाद भी राजा रहेगा, आत्मा न तो दुबला है न पतला है न ऊंचा है न लंबा है न काला है न गोरा है, ये तो भगवान का नित्य सेवक और भगवान का अंश है, मम वंशो जीव लोके जीव होता है ईश्वर अंश जीव जब नाची चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि नित्य सनातन है, न कभी जन्म में और मरने वाला है, जो इस तत्व को जानता है वो माया से मुक्त होकर के भगवान के चरण में पहुंच जाता है। जी कभी भी भगवान नहीं होता, भगवान का दास बनता है। तो वो कहने लगे जी भगवान का नित्य सेवक, इस जगत में आकर के शरीर को पा करके शरीर में आत्मबुद्धि करता जब मैं और मेरा सब समय मैं गोरा हूं मैं गोरी हूं सुंदरी हूं मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं मुसलमान हूं क्रिश्चियन हूं ईसाई हूं और सुख दुख का कर्ता मैं हूं, ऐसा समझने लगता है और ऐसा समझ करके संसार में बद्ध हो जाता है। ये संसार की रीति है, हम लोग इन कथाओं को सुन करके समझे हम इन गुणों से प्रकृति से अतीत हैं, हम शुद्ध जीवात्मा हैं, भगवान का सेवा करने के लिए इस जगत में आए थे भक्ति के लिए, किंतु ओ तो न लगे कपास संसारी कार्यों में फंस करके आसक्त मत हो, जीवन निर्वाह के लिए जब किंचित जो कुछ है करो, किंतु अवशेष समय भगवान का भजन करने में लगाओ, तब तो यह संसार से मुक्ति होगी, नहीं तो जीवन मरण के चक्कर में पड़ेगा। ऐसे ही महात्मा की भक्त जी की बहुत सी कथाएं हैं, प्रसंग अवस्था हम उनको सुनाएंगे, आज रात बहुत कुछ अधिक हो गई आपको भी जाना है, इसलिए संक्षेप में मैंने इसका वर्णन किया। उन कथाओं का आश्रय ग्रहण करके समझ करके भगवान का भजन करो, कुछ मत करो, केवल क्या करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रवासी भी इसमें काम में पिछड़ जाते हैं, उन लोगों को भी उचित है कि श्रद्धापूर्वक पुनः पुनः श्रवण करने पर भी इसको सुने, एक बार सुनना हो गया अब सुनने की जरूरत नहीं है, ये भक्त लोग नहीं कहते। तो एक दिन खा लो फिर रोज रोज खाने की कोई जरूरत नहीं है, भोजन मत खाओ, एक दिन तो खा ही लिया, श्वास लेते हो एक बार फिर दूसरी बार नहीं लेने की जरूरत है, एक बार पानी पिया फिर दूसरी बार पानी पीने की जरूरत नहीं है। पुनः पुनः भक्ति के साधनों का अभ्यास करना ही भक्ति है। इसलिए भगवत कथा होने पर, और वो भी यदि वैष्णव के मुख से होती है, तो उसको सुनने से कल्याण होता है और भक्ति की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। संस्कार के बिना भक्ति नहीं होता, पूर्व जन्म का संस्कार भी होना चाहिए और इस जन्म का भी संस्कार होना चाहिए, दोनों को मिला करके भक्ति होता है। पूरी जन्म में भक्ति का कोई संस्कार ही नहीं है, कोई सुकृति नहीं किया, तुलसी की सेवा नहीं की, यमुना की सेवा नहीं की, गिरिराज जी की सेवा नहीं की, किसी भक्त की सेवा नहीं की, हरि कथा कुछ नहीं सुना, ऐसे लोगों को भक्ति में रुचि नहीं होगी। उनको भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान में, कर्म में, तपस्या में, व्रत करने में, दान देने में, उपवास रहने में, जल में नदी को तीर्थ मान करके उसमें स्नान करने की रुचि रहेगी, एकांतिक भक्ति में उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए किसी प्रकार से यदि हमें यह सुयोग प्राप्त हो रहा है, हम समझेंगे हमारे पूर्व जन्म की कुछ भक्ति की का संस्कार था और इस जन्म में वो संस्कार पुष्ट होकर के तब शुद्ध भक्ति में वो लगेगा, अन्यथा नहीं लग सकता, थोड़ी सी सुकृति से नहीं होगा। देखो प्रहलाद महाराज जी को, वो उसी जन्म का यह फल नहीं है, पहले जन्म में वो ब्राह्मण के बच्चे थे, बड़े सदाचारी थे, बड़े तत्वज्ञान को भी जानते थे, सदाचार संपन्न थे, किंतु उन सब गुणों ने भी उनको माया से, माया में आसक्त करने से रोक नहीं सका, उनकी रक्षा नहीं कर सके। माया बड़ी प्रबल होती है। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और एक वेश्या के चंगुल में पड़ गए। वेश्या बड़ी रूपवती और किशोरी थी, बड़ा सुंदर गाना गाती थी, अपने हाव भाव से उनको एकदम वशीभूत कर लिया और उनका धन और सब कुछ ले लिया, उनका परमार्थ सब समाप्त एक तरह से कर दिया। वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर उस वेश्या में इतने आसक्त हुए, उनके बिना उनसे रहा नहीं जाए। जब वेश्या ने देखा उनके पास में अब कोई धन नहीं है, जब वो आए तो उनको झिड़क दिया, मेरे पास किस लिए आते हो, जब पैसा नहीं, ये रखने के साथ साथ में उनके हृदय में बाण जैसा लगा, बड़े व्यथित होकर के, दुखित होकर के उसके घर से निकल गए। उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, सोचा जो कैसे प्राण को छोड़ दूं, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, आज उसने हमको ऐसा ठक्कर मारा, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, बस प्राण प्रत्याग कर दूंगा। चलते चलते शाम हो गई, जाड़े का दिन, इतने में बरसा, बादल उमड़ घुमड़ कर आए, जोरों से बरसा होने लगी, थोड़ी देर में घना अंधकार हो गया। वो जंगल में जाकर उपस्थित थे, बाघ भालू भी गर्जन करने लगे, डर के मारे प्राण सूख गए, बहुत ठंड हवा लगने लगी, अपने को बचाने के लिए और प्राण पर का मोह नहीं छोड़ सके और बचाने के लिए वहां पर कोई आश्रय ढूंढने, उनको सामने ही एक टूटा फूटा मंदिर मिला। उस मंदिर में वो घुस गए और उसके एक कोने में बिना खाए पिए बस उसी की चिंता, हाय हाय करते 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 सारी रात बीत गई। वेश्या भी उनको घर से निकाल करके बड़ी दुखी हुई और उसने सोचा कि हमने हाय हाय ये क्या किया, उसका सर्वस्व मैंने ग्रहण कर लिया और उसको इस प्रकार से अपमानित होकर के घर से निकाल दिया। उसको चैन नहीं मिला और वो भी उनका पीछा करते 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 करते
उसी प्रकार से उसी वन में और रात में उसी टूटे फूटे मंदिर के एक कोने में जाकर के रात भर से शक्ति रही एक कोने में ये ब्राह्मण बालक और दूसरे में कोने में वो रात भर तड़पते रहे। सवेरा हुआ देखा जी ये तो नृसिंह जी का मंदिर भक्ति भाव से प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया वो वैश्याधीश ठाकुर जी को प्रणाम किया और होती ही उनके चरणों में वो गिर गई आप मुझे क्षमा करें। बाई चांस उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन नृसिंह चतुर्दशी का व्रत था हाथों पापी और उसकी स्त्री भी पापी हो गई वैश्या जब विचार में लग्न है तभी उस दिन नृसिंह चतुर्दशी व्रत होने से न खाया न पिया न सोया रात का जागरण भी हो गया खाना पीना उपवास हो गया और ठाकुर जी के मंदिर में ये सब बात हुई इसलिए भक्ति का एक ऐसा संसार जन्म गया कि प्रहलाद महाराज जी और वो वैश्या प्राण छोड़ने के बाद में भगवान की व्यवस्था के अनुसार में सुचिनांग श्रीमातांग गेहे जो वो भ्रष्ट अभी जाए थे वो जो वहां पर गए थे ये भक्ति का प्रारंभ हुआ रात में जागरण करना नृसिंह चतुर्दशी का उपवास करना नहीं जानते हुए भी इसका फल यह ऐसा हुआ कि अपनी माता के गर्भ में दूसरे जन्म में इतना 7,000 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और नारद ऋषि उनको उपदेश देते रहे वेद वेदांत उपनिषद श्रीमद् भागवत इत्यादि के उपदेशों को उनको बतलाते रहे 7,000 वर्ष अगले 7,000 वर्ष कैसे फिर हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयुधा के गर्भ में वो आए और 7,000 वर्ष तक इसलिए रहे वो 7,000 वर्ष के लिए तपस्या के लिए गया था और उनकी पत्नी कयुधा ने नारद जी की सेवा करके उनको प्रसन्न कर दिया और मुहंगा बर मांग दिया नारद जी ने कहा जी बर मांगो तू क्या चाहती है तो उन्होंने कहा हमको इच्छा के अनुरूप में हमारा बेटा पैदा हो जब कभी अपने समय से ना हो मैं जब चाहूं तब बेटा पैदा हो। मैंने कहा यो मस्त ऐसा ही होगा 7,000 वर्ष के आश्रम में रह करके घर का काम करती आश्रम का आश्रम को लिपटोत देती तुलसी का चपुत्रा लिपटोत देती स्नान इत्यादि की व्यवस्था कर देती और इस तरह से ये उसको सवेरे शाम जब समय मिलता उसको भक्ति का उपदेश देते वेद का उपनिषद का ज्ञान संपूर्ण उसको 7,000 वर्ष में सुना हम कभी 1 घंटे 8 घंटे हम लोग सुना रहे हैं और वो निविष्ट होकर के सुनाते मैया सुनती किंतु भूल जाती अपने हृदय में नहीं रख पाती क्यों उन्होंने उसकी मैया के उद्देश्य से नहीं कहा बच्चे को उद्देश्य करके कहा इसलिए वो बच्चा में ऐसा संस्कार जन्मा कि जन्म के साथ ही साथ में वो उसमें भक्ति ज्ञान विराग सब कुछ उसके अंदर में उपस्थित और इतना आत्मज्ञानी हुआ और भगवान का शरणागत भक्त जन्म के साथ ही साथ हुआ निर्भय बना रहा 5 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से निर्भय और आत्मज्ञान और भक्ति योग से परिपूर्ण जब वो 5 वर्ष का हुआ आप लोगों ने अभी सुना कि अभी बाकी नहीं सुना दिया इन्होंने सुना दिया होगा तभी मैं संक्षेप में बतला रहा हूं 5 वर्ष की उम्र में उसके पिताजी ने पूछा जो तुमने स्कूल में सबसे अच्छा क्या पढ़ाई थी हमें दूसरा शब्द उसको बतलाओ उन्होंने यही बतलाया जो लोग इस संसार में आसक्ति में मग्न है उन सबको छोड़ करके वैष्णव के अनुगत्य में भगवान का भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य समझता हूं यही समस्त शास्त्रों का सार है अपने जीवन को भोगों में विषय भोगों में बिताना उचित नहीं उसको त्याग करके बचपन में से ही किसी शुद्ध भक्त का गुरु का आश्रय लेकर के भगवान का एकांतिक रूप में भजन करना ही जीवों के लिए सर्वथा उपयुक्त कर्तव्य है इससे बढ़कर के कोई कर्तव्य सुन करके वो तिल मिला गया तिल मिलाने की ही बात थी ये उसी के लिए कहा गया था, हिरण्यकश्यपु के लिए। उसमें कहा गया ये संसार एक कूप है जिसमें कि सूखा हुआ पानी, पानी नहीं, उसमें सर्प निवास करते हैं। संसार की उपमा में यह बतलाया, ये संसार क्या है, सूखा हुआ पानी रहित एक कुआं है, उसके घाट उखड़ गए हैं, उस कुएं में अंदर में सांप बिच्छू इत्यादि निवास करते हैं, पानी तो है ही नहीं। एक पथिक जा रहा था किसी जंगल में, उसने देखा जो सामने से बाघ चर्राता हुआ आया, उस पर टूट पड़ा, बचने का उपाय नहीं, देख करके उसी कुएं में जिसमें पानी नहीं है और उसके ऊपर से घास और पेड़ पौधे कुछ उग आए हैं जिसमें कुआं नहीं दिखाई देता, झट उनकी दो डालों को पकड़ करके और उसी कुएं के अंदर में घुल गया। पीपल का छोटा सा पेड़ था, उसकी दो टहने थी, उन दोनों को पकड़ दिया, कुएं में घुल गया। थोड़ी देर के बाद में देखा कितना देर तक पकड़ करके रहूंगा, नीचे जरा देखूं, तो नीचे देखा जो सांप काले काले फस फस ऐसा कर रहे थे, जो नीचे जाएगा उसे काटे, ऊपर में बाघ गर्जन कर रहा है और अपने पंजों से थपेड़ा मार रहा, अभी आएगा अभी कट मार रहा। देखकर के भयभीत होगा कांप गया। थोड़ी देर के बाद में देखा दो चूहे कुएं से निकलकर, कुएं के गड्ढे से निकलकर और उसे काटने लगे जिसको वो पकड़ करके झूल रहा था, एक काला चूहा था और एक सफेद चूहा, यदि वो काट देते हैं थोड़ी देर में तो अपने आप गिर जाएगा, यदि पकड़े रहे तो भी, और मृत्यु अनिवार्य है चारों तरफ से। इतने में उसे दिखाई पड़ा जिस जहां वो उसका मुख है उसके सामने ही ऊपर में मधुमक्खियों का छत्ता है एक डाल में, और वहां से मधु टप टप कर टपक रही। अब तो मर ही रहे हैं, मरना तो अनिवार्य है, जरा देखूं तो, बस जी बढ़ाया और उसके जी पर दो एक बूंद पड़ी, क्या मधुर, भूल गया सब ऊपर में नीचे में मृत्यु, और पुनः पुनः अब उसी मधु को चाटने की चेष्टा में लग रहा जीभ को बढ़ाकर। यही दशा हमारी है, यह संसार कूप है, हम जी दो डालियों को पकड़ रखें, कर्म एक पेड़ है, उसमें पाप और पुण्य दो डाल है, डाल को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा, एक दिन और एक रात, एक एक मिनट में काटते हुए मैंने चलते बीतते हुए चले जाए, एक न एक दिन ये दिन समाप्त हो जाएंगे, आयु पूरी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। ये चूहों का काटना है, पाप पुण्य से बना हुआ ये वृक्ष है, तो ये दोनों चूहे काट रहे हैं। मधु का बुंद इसमें क्या है, संसार में जब कामों से फुर्सत मिल करके जब घर आते हैं तो पत्नी के मधुर बात बातचीत, बच्चों का प्रेम पूर्वक गोदी में बैठ करके पिताजी पिताजी, या पत्नी से जब पति मिलता है तो मधुर मधुर दो बातें करता है, पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, और यदि नहीं करता तो पति का मन खराब हो जाता है, स्त्री का मन खराब हो जाता है, परस्पर परस्पर जितना भी कष्ट दिन भर किया और बच्चे प्रेम से आकर के गोदी में बैठ गए सब दूर हो जाए। ये आसक्ति जो है परस्पर का, ये आसक्ति रूप में यही बुंद है। ये संसार के लोग बस इन्हीं को लेकर के चलते हैं, और कुछ दिन में बूढ़े हो जाने के बाद में तब क्या होता है, वही बच्चे जो थे अब बड़े हो गए, पंख उग गए, विवाह शादी हो गया, उड़ करके दूसरे घोंसले में चले गए, जैसे के तैसे, जैसे बचपन में थे अकेले हो जाता, स्त्री भी मर गई या पुरुष भी मर गया, बस अकेले शरीर असहाय हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते, पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकते, और बैठे रहते हैं या बहू ताना मारती है, मर क्यों नहीं जाते, घर में क्यों आते हैं, उस समय जीना बड़ा भारी दुष्कर हो जाता। अभी तो नहीं, उम्र ढलने पर ऐसी पुरुष और स्त्री सभी लोग इसका अनुभव करेंगे। तो उसमें मधु केवल है संतान और परस्पर पति और पत्नी का स्नेह हो जाता, ये भी कट करके गिर जाने वाला है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कर्तव्य पुरुष इन बातों को जान करके इनको छोड़कर इनमें आसक्ति को छोड़ करके भले ही संसार में आसक्ति को छोड़ करके परस्पर भगवान का भजन करते हैं, यही बुद्धिमानी का कर्तव्य है। यदि भगवान की भक्ति होगी या साधन कोई कर रहा है इसका कुछ लक्षण है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, साधन हरिनाम कर रहे हैं, तिलक माला ले रहे हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, तो ये भक्ति हमारी आरंभ हो गई है? नहीं हुई। अभी तो शरणागति भी नहीं आई। यदि वो भगवान का शरणागत होने पर भक्ति आरंभ करने पर भी निर्भय नहीं होता, भक्ति के बाधाओं से बिल्कुल निर्भय नहीं हो जाता कि भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसा पक्का विश्वास नहीं हो जाए, तब तक भक्ति अभी आरंभ नहीं हुई। अभी तो शरणागति भी नहीं हुई, आना जाना एक तरह से अभी सुकृति कुछ है। इसलिए ऐसा विश्वास पक्का हो जाना चाहिए, कृष्ण हमारी रक्षा किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, प्रहलाद महाराज की रक्षा की, उसके पिता कितने बलवान थे, भूमंडल में क्या 7-14 लोगों में उसके बराबर बराबरी का कोई जीव नहीं था। देवता लोग उनके घरों में पानी बाहर देते भरते, झाड़ू लगाते, पवन देव झाड़ू लगाता था, वरुण उनके घर में पानी भरते थे, इंद्र को जैसा आदेश देता वैसा करते। ऐसा आदमी प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए चेष्टा करते हैं और प्रहलाद महाराज ने ये नहीं पूछा कि प्रभु हमको किस लिए पिताजी मार रहे हैं, मैंने क्या दोष किया, मेरा कसूर क्या है। ये तो बात दूर है, भगवान से प्रार्थना कीजिए प्रभु हमारी रक्षा करें। यदि ऐसा हम निर्भीक नहीं होंगे तो समाज के उत्पातों से हम भगवान का भजन छोड़ देंगे। आपने कहा जो यहां पर हरि कथा सुन करके कोई गया घर में, पत्नी पति से बोली आज से मैं प्याज नहीं खाऊंगी, लहसुन नहीं खाऊंगी, आज से मैं मांस मछली और सफेद आलू नहीं खाऊंगी, सफेद आलू माने अंडे नहीं लूंगी, ये क्या अभी मार करके तुम्हारी तलवड़ी तोड़ दूंगा, नहीं खाएगी प्रजा। अच्छा अच्छा जैसा कहते हैं, भगवान का नाम हमारे घर में रहेगी तो ना करना, कहेंगे फिर तब तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, इसलिए नहीं भजन करेंगे। तब तो ये सब कुछ सुना दिया, खत्म। निर्भय होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। यदि पिता गुरु देश के राष्ट्र के सभी लोग मिलकर के भी हमारे भजन को नष्ट करने के लिए चेष्टा करेंगे, मैं भजन करना नहीं छोड़ूंगा, प्राण भी चला जाए तो भी, खंड खंड यदि कोई गोटी गोटी उड़ा दे, भगवान मेरी जरूर रक्षा करेगा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ और संकल्प होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो भगवान का भजन किया, भगवान का आश्रय लेकर के भी ऐसा यदि नहीं कर सकते तो भगवान का भजन करेगा। तुलसीदास जी को मीराबाई ने संकट की अवस्था में जब उसके पति विरोधी हो गए, उसकी सास विरोधी हो गई, उसकी ननद विरोधी हो गई, राज्य वाले सभी लोग विरोधी हो गए और एक तरफ में अकेली खड़ी मीरा, पति भी उसको जान से मारने की चेष्टा की और अकेली थी। उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, महात्मा जी मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, सारा संसार सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो रही हैं, मैं क्या करूं। तुलसीदास ने उसी समय में उनको पत्र दिया, जिनके प्रिय न राम गये देवी तजिए कोटि बैरी समझ जद्यप परम स्नेही, तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजव कंत प्रतिपनिषद भय जग मंगल कारी। जिनके राम और सीता प्रिय नहीं है, जिनके प्रिय राधा कृष्ण नहीं है, वो भले ही अपना पति हो, भले ही अपना गुरु हो, भले ही अपना बड़ा भाई हो, वो हमारा बंधु हो, कोई भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, उसको परम विष के समान समझकर और उसका पत्या कर दो, उसका मंगल होगा। वो पति पति नहीं, वो भाई भाई नहीं, उधर में क्या कर रहा है भाई, इधर सुनो सब, वो भाई भाई नहीं, वो पति पति नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो भगवान के भजन में सहायता नहीं कर। ऐसे पिता को, ऐसे भाई को, ऐसे पति को, ऐसी कोई भी हो, उसको तत्क्षणात् प्रत्याग कर दो। शास्त्रों में इसके उदाहरण है, तजव पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को, तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बड़े भाई को खो दिया, उसने लात मारा अपने भाई को। उन्होंने कहा विभीषण जी ने, अरे सीता जी लक्ष्मी है, राम स्वयं परब्रह्म है, इनको लेकर के उपहार के साथ में लेकर के रामचंद्र जी को समर्पण करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा नहीं। अगर हमको शिक्षा देने आए, एक लात मात्र है, जाओ भागो। उन्होंने ऐसे भाई को छोड़ करके सदा के लिए रामचंद्र जी के चरण कमलों का आश्रय लिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने मैया को प्रत्याग कर दिया, मैया का दोष क्या, रामचंद्र जी के लिए वनवास दिया 14 वर्ष का, और भरत के लिए राज्य मांगा, ये तो भरत के लिए अच्छा ही था, किंतु ऐसे माता को उन्होंने कुमाता कहकर के सदा के लिए प्रत्याग किया। यहां तक कि जब रामचंद्र जी अयोध्या में लौटे भरत जी, और उस समय में नंदीग्राम में अकेले तपस्या कर रहे थे, राजकाज भी चला रहे हैं, उस समय माता कैकेयी उनके पास में गई और उन्होंने क्षमा मांगा, कहा जब बेटा ये राजभवन हमारे लिए बिच्छू डंक रहे हैं, काट रहे हैं बिच्छू जैसा, हमको नहीं चाहिए ऐसा राजभवन, हम तुम्हारे पास में रह करके इस जंगल में ही मंगल समझेंगे, हमको तुम आदेश दो तुम्हारे पास में आकर के रहूं। उन्होंने कहा आप राजरानी हैं, मैया का संबंध हमारा टूट चुका है, आप राजरानी हैं, आपकी सुख की सारी व्यवस्था वहीं पर होगी, अब मैया का संबंध नहीं रहेगा। वहां से लौटी विमुख होकर के और एकदम पागल हो गई, बस मरना ही केवल बाकी था। रामचंद्र जी जब वनवास से आए, भरत जी ये कैकेयी उनसे सबसे पहले मिली, ये सबसे पहले कैकेयी के यहां मिले गए, और कैकेयी से कहा, कैकेयी ने कहा जब बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भैया मांग लो, क्या चाहती हो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। मैया ने कहा बेटा एक बार हमारा बेटा हमको एक बार मां कह दे, मैं चेष्टा करूंगा। मैया चली जाने के बाद में भरत को बुलाया, भरत तो हमारा भैया है ना जी, मेरी सब बातों को मानता है तो हमें सब आपकी बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता, ठीक है आप मांगिए, किंतु एक बात छोड़कर, राजरानी को पुनः माता करने के अतिरिक्त आप जो कुछ चाहेंगे, प्राण भी जो कुछ भी, मैं सब कुछ दे दूंगा। तो सजव पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी, भरत जी ने ऐसे माता जी का प्रत्याग किया, कैकेयी का कोई दोष नहीं था, रामचंद्र जी ने ऐसा कराया था सब जगत के कल्याण के लिए, किंतु शिक्षा के लिए ये दिखला रहे हैं, जैसे माता को अंत तक माता नहीं माना, जिनका प्रिय कृष्ण और राधा नहीं है, राम और सीता जी नहीं, तभी कोटि बैरी समय जद्यप परम से नहीं, उनका संबंध प्रत्याग करना ही भक्ति के लिए उचित है। इस भक्ति में यदि भक्ति नहीं कोई करता तो उसके लिए, यदि पति भजन करता है स्त्री नहीं करती, उसमें आधा भाग नहीं होगा। यदि पत्नी भजन करती है और पति नहीं करता तो पत्नी में सदा आधा भाग अपने पति को नहीं मिलेगा। संसार के इन कामों में जो दान तपस्या और ये सब जगत के जो वर्णाश्रम धर्म के, उनमें तो आधा ले लेगी, किंतु भक्ति में जहां आत्मा का धर्म है उसमें ये बंटवारा नहीं होता, जो भक्त भजन करेगा उसी को भक्त मिलेगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझें, बेटा का उसमें उत्तराधिकारी नहीं होगा। बहुत ऐसे जैसे महापुरुष भगवान का बेटा भजन नहीं करता तो उत्तराधिकार में उसका घर का संपत्ति का तो मालिक बन जाएगा, वो उत्तराधिकारी बिना रजिस्ट्री के ही, किंतु भक्ति में वो अधिकारी नहीं होगा। न पति में पति, न पत्नी का पति में, न पुत्र का बाप के संपत्ति में, न लड़कियों, वहां कोई हिस्सा नहीं, वहां अखंड भक्ति है। जो भजन करेगा उसी को मिलेगा। इस चीज को समझना चाहिए प्रहलाद जी के उपस्थान। तब तो ये भागवत सुनना हुआ, इसलिए इस चीज को ठीक रखना चाहिए। यदि पति हमारा भक्त है तो हमारा सर्वस्व है, तो पति क्या कर रहा था प्रहलाद जी? भक्ति अखंड होती है, उसमें हिस्सा नहीं बढ़ता। हिस्सा बढ़ता ही इसमें वर्णाश्रम धर्म के कामों में, दान में, दक्षिणा में। कोई और काम हो रहा है तो पति पत्नी बिना बैठे यज्ञ नहीं कर सकते। रामचंद्र भी नहीं यज्ञ कर सकते सीता के बिना, उनको सीता की मूर्ति बनवानी पड़ी। इसलिए इसमें जरूरी है भाग ले लेगा, किंतु भक्ति में कोई भाग नहीं ले सकता। जो भजन करेगा वही, इसलिए भक्ति एक ऐसी निराली है, ये आत्मा का धर्म है। और ये सब दान पुण्य ये सब बद्ध जीवात्मा शरीर में बद्ध होने पर उसका वो धर्म है, उसमें वो भाग लेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को छोड़ा था, निर्भय होकर के, डरे नहीं, हजार चेष्टा किया मारने के लिए, मार नहीं सका वो। अंत में वो डर गया और डर करके गुरुगृह में दे दिया संडा मर्ख के। यहां संड बना होता है शांत बेपरवाह, उसका कोई ज्ञान नहीं होता। बैठ हारमोनियम के पास में बैठ, उनको तनिक भी कोई ज्ञान नहीं होता। खाता पीता मस्त रहता है, डोलता फिरता इधर। बरसात के दिनों में उसके गोबर का कोई काम नहीं होता। ऐसा शांत जो धर्म से संबंध नहीं। और अमर्थ मन अंधकार, यहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो ज्ञान नहीं। ऐसे का वो दोनों संडा मर्क जो शुक्राचार्य के बेटे थे, उनको पास में पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य जी आएंगे तब इसको ज्ञान देंगे, तब अपने पिता की ये सेवा कर सकेगा। और उन्होंने बच्चों के साथ में ये कहना आरंभ कर दिया, बच्चों को बुलाया, खेलो माता जाओ हमारी बात सुनो। उन्होंने कहा कुमार आचे प्रो धर्मान भगवतान यह। कुमार काल से बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए। क्यों? असुर बालकों ने पूछा जे क्यों? अभी हम खेलेंगे कूदेंगे, बड़े होंगे, स्कूल में जाएंगे, पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग, वकालत, छल छदमा, राजनीति इत्यादि हम पढ़ लेंगे, और इसके बाद में घर बनाएंगे, विवाह करेंगे, मस्त होंगे, और इसके बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा उसमें भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा अरे यदि तुम्हारा बचपन में ही मृत्यु तुम्हारी हो जाए और बुढ़ापा आए नहीं तो फिर क्या होगा? कब मृत्यु आएगी कोई ठीक नहीं, आज है हम कल नहीं है, कोई ठीक नहीं, इसलिए आज से भजन करो। तो फिर हमको सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए? नहीं, न तब प्रयास हो कर्तव्य जाता है व्यापरम। अरे दुख तो बिना बुलाए आ जाता है। यदि सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुमने पूर्व जन्म में सुख के लिए कर्म किया है, तो भी खुदा फाड़ करके छप्पर फाड़ करके दे देगा। दुख बिना बुलाए आता है। एक बुढ़ापा नाम की सबके पास आने वाली एक बुढ़िया है, उसको कोई नहीं चाहता। केश पके हुए, मुख टेढ़े हो गए, दांत नहीं है उसके, कोई मांस तक नहीं, बड़ी विकराल भयानी मूर्ति, और सबसे चिपकेगी। ऐसा कोई नहीं जिसे वो विवाह नहीं कर लेगी, केवल भक्तों को छोड़कर। जरूर सबको सताएगी ये बुढ़ापा, मरना भी सबको, जो जीवित है अभी जन्म लिया उनको मरना भी अवश्य है। उसी तरह से यदि सुख तुम्हारे लिए होगा, तुमने कर्म किया ऐसा किया होगा, सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा। कोई नहीं चाहता है राजा बन जाता है, और कोई हजार चेष्टा करता है कुछ नहीं होता। इसलिए बचपन से ही और सुख के लिए प्रयास न करके भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि बचपन में ही गुरु कर्ण करके, गुरु का पदाश्रय करके, उनसे मंत्र इत्यादि लेकर भगवान का भक्ति आरंभ कर देना चाहिए। बिना गुरु के सेवा के नहीं हो सकता है ये, इसलिए गुरु पदाश्रय करके जितने प्रकार के विघ्न हैं उनकी सेवा से सब दूर हो जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है और भगवान के चित्त भक्ति में चित्त लग जाता है। इस तरह से उनका उपदेश देने लगे और अपने पूर्व जन्म का इतिहास बना। इसलिए इन सब शिक्षाओं को हम लोगों को ग्रहण करके निर्भीक होकर के केवल मात्र भक्ति का ही अवलंबन करना चाहिए। तुलसी की रोज सेवा, देखने में ऐसे मालूम होता है कि कुछ नहीं, प्रतिदिन हरि नाम करना, प्रतिदिन कुछ हरि कथा सुनना, यदि अवसर नहीं मिलता तो अपने घर में ही गीता भागवत थोड़ा सा पढ़ लेना, उसको समझने की चेष्टा करना, भगवत दर्शन करना, ये सब सहज भक्ति के रूप में। उन्होंने बतलाया था श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखम आत्मनिवेदनम। ये नौ प्रकार की भक्ति बतलाई, भगवान के धामों में जाना, मंदिरों में जाना, भगवान की कथा सुनना, श्रीअंतर भगवान का नाम करना, विशेष तौर से कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस उसे तप का सब कुछ हो जाएगा। भक्ति और करने की कोई जरूरत नहीं, न तपस्या न जोग न तप न तप न कुछ भी। इस तरह से भागवत को सुन करके ये सब चीजें आनी चाहिए, निर्भीकता आनी चाहिए, एकांतिकता। कृष्ण के और राधा जी के चरणों को छोड़ करके इस ब्रज में रह करके हम और कोई भी उपासना नहीं करते, सब उनके देवता देवी सब उनके किंकर हैं, उनके दास और गुलाम हैं। भगवान की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जिसे वो पाते हैं भक्ति, क्यों नहीं हम उनके चरणों में राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति करें। इसलिए ब्रजवासी होकर के विशेष करके इस ब्रज में जन्म लेकर के यमुना के किनारे गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना के निकट में रह सकते, और किसी की आज से उपासना नहीं करेंगे। उपासना करेंगे किसकी? राधा और कृष्ण की। किंतु इस उपासना में भी राधा के तरफ में अधिक झुकाव होना चाहिए श्रीमती जी के, तब वो प्रेमा भक्ति ब्रजवास भक्ति आएगी, नहीं तो कदापि वो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, अपनी भक्ति से वो प्रसन्न नहीं होते और राधा जी के भक्ति का दंड होने पर भी उसके अधीन बन जाते हैं। ये भक्ति का एक रहस्य है। ऐसा जान करके आप लोग शुद्धा भक्ति का आचरण कीजिए, अनायासी भव सागर से तार पार करके कृष्ण की सेवा को प्राप्त करें। अभी एक बेटी आई है, बहुत सुंदर मधुर कीर्तन करेगी, आप उसको श्रवण करें जल्दी। इसके बाद में तो सब आरती होने के बाद, अभी कोई टस से मस नहीं हो।